उत्तर पूर्व अद्भुत रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर पूर्वोत्तर डायरी।
सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
पूर्वोत्तर डायरी।
सिक्किम राज्य के एक जिले गेजिंग में एक छोटे से गांव में बहुत महत्वपूर्ण खोज हुई है। दरअसल पुरातात्विक खोज में ऐसे रोचक पत्थर सामने आए हैं जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हैं और कहा जा रहा है कि ये मेगालिथिक काल के पत्थर हैं। तो ये किस तरह की खोज है और कैसे ये पुरातत्व विज्ञान में रुचि रखने वालों को आकर्षित कर रही है, हमारे संवाददाता दिल्ली राम दुलाल ने अपनी इस रिपोर्ट में इस खोज के बारे में विस्तार से बताया है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के शोधकर्ता हरिचंद्र शर्मा ने बताया कि लगभग एक माह पहले सोशल मीडिया पर असामान्य पत्थर संरचनाओं की तस्वीरें प्रसारित होने के बाद यह मामला संज्ञान में आया, जिसके पश्चात उन्होंने स्थल का क्षेत्रीय निरीक्षण किया। उन्होंने खड़े हुए पत्थर स्लैब जैसी संरचनाएं तथा क्रमबद्ध विन्यास देखे जो दफन चिन्हों या मंचों की ओर संकेत कर सकता है। शर्मा ने स्पष्ट किया कि ये निष्कर्ष प्रारंभिक स्तर के है और खुदाई या कार्बन डेटिंग के माध्यम से अभी तक वैज्ञानिक रूप से सत्यापित नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा,
हम लोगों ने सिक्किम के प्राचीन पुरातत्व विरासत के लिए एक युगांतरी खोज किया हुआ है। पश्चिम सिक्किम के गेजिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर देंताम ब्लॉक के मिडल मांगमू वार्ड करके जगह में एक मेगालिथिक साइट जो समावित 2000 वर्ष पुराना या उससे भी आगे हो सकता है, ऐसा खोज की गई है। प्रारंभिक हम सर्वेक्षण के दौरान हमको यह मिला हुआ है कि ये स्थल मेगालिथिक को दर्शाता है, मैनिर और डॉलमेन बोलते हैं, ये पाए गए हैं एंड ये संभावित बहुत पुराने भी हो सकते हैं एंड लिविंग मेगालिथिक कल्चर के हिस्सा नहीं लग रहे हैं अभी हमको, ये पुराना भी हो सकते हैं। ये सिक्किम की विशेषता में और सिक्किम की संस्कृति में ये पहला ऐसा कदम है जहाँ पे ऐसी पुरानी हमको सभ्यता मिली हुई है। संभवतः सिक्किम का पहला ये दस्तावेजीकृत मेगालिथिक साइट हमने को डिस्कवर किया हुआ है। सांस्कृतिक महत्व से बहुत ही इम्पोर्टेंट दिख रहा है अभी हमको और यहाँ पे बौद्ध अभिलेख भी मिले हुए हैं और एक पत्थर पे हमको ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो पाली लैंग्वेज भी दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, उसके ऊपर थोड़ा रंजाना लिपि भी हमको दिख रहा है। इसको और स्टडी करना है, इसको और खोज करना है, तभी उसके बाद पता चलेगा कि ये क्या है करके। और दूसरी बात ये है कि एक पुरानी संरचना भी मिल रही है वहां पे जो हमको अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जैसा दिख रहा है एंड ये जो पुरानी संरचना मिल रही है एंड जो ये साइट्स हमको मिला हुआ है, इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पे लोग पहले से ही, बहुत पहले से ही लोग रहते थे एंड लोगों को पता था कि एक रेसिडेंशियल प्लेस था और ये हैबिटल लैंड था करके पता था, इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा हमको एक कंटिन्यूस संस्कृति मिला हुआ है मेगालिथिक से लेके अर्ली हिस्टोरिक बुद्धिस्ट पीरियड तक। एंड जो इंस्क्रिप्शन मिला हुआ है वो अर्ली हिस्टोरिक भी हो सकता है, प्री बुद्धिस्ट भी हो सकता है, अभी उसको हमको और स्टडी करना है एंड इसके लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम कल्चर डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा हुआ है एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने इस लेटर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रायगंज जो हमारा सिक्किम देखता है उसको फॉरवर्ड किया गया है। अब देखना है कि हमारा जो आर्कियोलॉजिस्ट का टीम है वो आएगी, फिर इसको एक अच्छी तरीके से इसका इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन होगा, हो सके तो बाद में इसका एक्सकेवेशन भी करना पड़े, पर अभी हम प्रारंभिक स्थिति में है इसीलिए हमको ये सब दिख रहा है एंड इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन के बाद ही हम इसको डॉक्यूमेंट करके आप बता पाएंगे कि ये कितना क्या है।
स्थानीय बुजुर्गों ने बताया कि पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र से लंबे समय तक दूरी बनाए रखी जाती थी, जबकि ग्रामीणों को इसके संभावित पुरातात्विक महत्व की जानकारी हाल ही में हुई है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की आधिकारिक अनुरोध प्राप्त होने के बाद ही एएसआई औपचारिक सर्वेक्षण कर सकता है, यदि पुष्टि होता है तो यह स्थल सिक्किम के प्रागैतिहासिक अतीत को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मोहिनाक चटर्जी के साथ मैं दिल्ली राम दुलाल।
2025 के विश्व खाद्य दिवस में फूड ऑफ द हिमालयाज नाम की एक खास प्रतियोगिता हुई थी और इस खास प्रतियोगिता में नागालैंड के एक विशेष व्यंजन को सम्मान मिला है। ठोकुयुन नाम का ये एक विशेष व्यंजन है और खासतौर पर जो नागालैंड का वोखा जिला है, वोखा जिले की पहाड़ियों में निवास करने वाली जनजाति का ये एक विशेष पारंपरिक व्यंजन है। तो हम अपनी इस विस्तृत रिपोर्ट में जान रहे हैं इस व्यंजन के बारे में और साथ ही इस व्यंजन की पौष्टिकताओं के बारे में। तो हमारी संवाददाता असोनो ने हमें ये विशेष रिपोर्ट भेजी है और इसमें विस्तार से बताया है कि किस तरह से नागालैंड का ये पारंपरिक व्यंजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक खास पहचान बना रहा है।
नागालैंड के वोखा जिले की पहाड़ियों से जुड़ा लोथा नागा समुदाय का पारंपरिक व्यंजन ठोकुयुन आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है। विश्व खाद्य दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित फूड ऑफ द हिमालयाज प्रतियोगिता में इस अनोखे व्यंजन को सम्मान मिला। ये सम्मान केवल एक पकवान की उपलब्धि नहीं बल्कि पूर्वोत्तर भारत की पारंपरिक खाद्य विरासत और जनजातीय ज्ञान की पहचान भी है। धुंध से ढकी पहाड़ियों और स्वच्छ नदियों के बीच बसे वोखा जिले में तैयार होने वाला ठोकुयुन लोथा नागा समुदाय का पीढ़ियों से चला आ रहा एक पारंपरिक व्यंजन है। इसे नदी में पाए जाने वाले केकड़ों और भुने हुए तिल के पेस्ट से बनाया जाता है। ये व्यंजन इस बात का उदाहरण है कि किस तरह स्थानीय समुदाय अपने आसपास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और समझदारी भरा उपयोग करते हैं। ठोकुयुन की शुरुआत नदी किनारे से होती है। यहाँ स्थानीय लोग हाथ से बने बांस के जालों का उपयोग करते हैं। इन जालों में मुर्गी के अंदरूनी हिस्सों को चारे के रूप में लगाया जाता है जिससे केकड़े आकर्षित होते हैं। कई बार केकड़ों को पत्थरों के नीचे से हाथ से भी निकाला जाता है या नदी किनारे बांस की खोटियों में चारा लगाकर पकड़ा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है जिसमें मौसम और नदी के बहाव को ध्यान में रखा जाता है। केकड़ों को इकट्ठा करने के बाद उन्हें अच्छी तरह साफ किया जाता है। इस व्यंजन की खास बात यह है कि इसमें केकड़े का पूरा हिस्सा इस्तेमाल होता है, खोल, पंजे, पैर और अंदरूनी भाग भी। इससे न केवल स्वाद गहरा होता है बल्कि पोषण भी बढ़ता है। इसके बाद भुने हुए तिल का गाढ़ा पेस्ट तैयार किया जाता है। तिल पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में पारंपरिक रूप से इस्तेमाल होता है और इसे ऊर्जा और पौष्टिकता का अच्छा स्रोत माना जाता है। इस पेस्ट में कुटा हुआ लहसुन, अदरक, मिर्च और बांस से बने सिरके का हल्का मिश्रण मिलाया जाता है। बांस का सिरका जिसे स्थानीय रूप से तैयार किया जाता है स्वाद के साथ साथ संरक्षण में भी सहायक माना जाता है। इन सभी को मिलाकर एक चिकना और सुगंधित पेस्ट बनाया जाता है। साफ किए गए केकड़ों को इस मसाले से अच्छी तरह लपेटा जाता है और उनके खोल के भीतर भी यह मिश्रण भरा जाता है। इसके बाद मसाले लगे केकड़ों को जंगली पत्तों में लपेटकर बांध दिया जाता है। फिर इन्हें लकड़ी की धीमी आंच पर हल्का गर्म किया जाता है। ये प्रारंभिक गर्मी कच्चेपन को कम करती है। इसके बाद इन्हें पारंपरिक रसोई के चूल्हे के ऊपर लटका दिया जाता है। नागा घरों में रसोई का चूल्हा केवल खाना बनाने का स्थान नहीं बल्कि खाद्य संरक्षण की भी जगह होता है। चूल्हे से उठने वाला धुआं और गर्मी केकड़ों को धीरे धीरे पकाते और सुरक्षित रखते हैं। 5 से 7 दिनों में प्राकृतिक किण्वन की प्रक्रिया शुरू होती है। इस दौरान केकड़े का मांस नरम हो जाता है और स्वाद गहराता जाता है। किण्वन के बाद इन्हें कुछ समय तक और धुएं में रखा जाता है जिससे उनका स्वाद और परिपक्व हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के कृत्रिम रसायन का उपयोग नहीं किया जाता। यही कारण है कि ठोकुयुन को पारंपरिक और प्राकृतिक खाद्य संरक्षण का उदाहरण माना जाता है। पोषण की दृष्टि से भी ये व्यंजन महत्वपूर्ण है। केकड़ा प्रोटीन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। वहीं किण्वन की प्रक्रिया से इसमें लाभकारी सूक्ष्म जीव विकसित होते हैं जो पाचन के लिए उपयोगी माने जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कई खाद्य पदार्थ किण्वन की प्रक्रिया से तैयार किए जाते हैं और थियोकोयोन भी उसी परंपरा का हिस्सा है। परंपरागत रूप से इसे चावल के साथ चटनी की तरह खाया जाता है। इसके अलावा ये उबली हुई सब्जियों, सूप और धुएं में पके मांस के साथ भी परोसा जाता है। अब युवा पीढ़ी इसे नए रूप में भी अपना रही है, जैसे सलाद और आधुनिक व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए। थियोकोयोन की इस खास परंपरा को दुनिया के सामने लाने में एक वृत्तचित्र ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। थियोकोयोन शीर्षक से बनी इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण ओवुंगथुंग जुंगियो ने किया और गिल्बर्ट हुम्सो का सहयोग रहा। इस वृत्तचित्र को विश्व खाद्य दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित फूड ऑफ द हिमालयास प्रतियोगिता में सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के परिणाम दिसंबर 2025 में घोषित किए गए। आज जब दुनिया पारंपरिक और स्थानीय खाद्य प्रणालियों की ओर फिर से ध्यान दे रही है, ऐसे में थियोकोयोन जैसे व्यंजन ये याद दिलाते हैं कि हमारे देश के जनजातीय समुदायों के पास प्रकृति के साथ संतुलन में जीने और भोजन को सुरक्षित रखने की गहरी समझ है। कोहिमा से युहाना और आसोनुओं की रिपोर्ट के साथ पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं प्रियंका अरोड़ा।
And the highlands, rivers and the water fountains, the tales of warriors of days gone by. We stand in truth and love for one and all in His name, and strive to restore and preserve our rich culture.
पूर्वोत्तर भारत के समग्र विकास में उत्तर पूर्वी परिषद की विभिन्न योजनाएं लगातार पूर्वोत्तर भारत की विकास की गति को तेज बढ़ा रही हैं और विशेष तौर पर अरुणाचल प्रदेश में जो विभिन्न परियोजनाएं संचालित हो रही हैं उसमें उत्तर पूर्वी परिषद का विशेष योगदान है। हमारे अरुणाचल प्रदेश संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश में संचालित हो रही विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी दी है, तो आइए सुनते हैं।
उत्तर पूर्वी परिषद यानी NAC ने जनवरी 2026 के दौरान पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में विकास कार्य को गति देने के लिए कुल 81,50,78,461 रुपए की राशि जारी की। यह राशि विभिन्न राज्यों और क्षेत्रीय एजेंसियों को दी गई, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास, आजीविका संवर्धन, संस्कृति के संरक्षण, अनुसंधान और नवाचार से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। इसमें अरुणाचल प्रदेश के लिए जारी की गई राशि विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। जनवरी 2026 के दौरान राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए कुल 6,70,68,827 रुपए जारी किए गए। इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्थानीय भाषा, शिक्षा, पर्यटन और खेल सुविधाओं को मजबूत करना है। इस राशि के तहत अरुणाचल प्रदेश में मातृभाषाओं के संरक्षण और साहित्यिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की गई। साथ ही कामले जिले के रागा क्षेत्र के सापारीजो कीचो में पर्यटन परिसर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया, जिससे स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके अलावा रामसाई जिले के चौखाम में एक मिनी फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण की योजना भी शामिल है, जो युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करेगा। तवांग स्थित दोर्जी खांडू कॉलेज में छात्रों के लिए बॉयज हॉस्टल का निर्माण भी इस पहल का हिस्सा है, जिससे दूर दराज के विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। अंजाव जिले में मेयर समुदाय के लिए आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़ी परियोजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। राज्य के अलावा NEC ने केंद्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों के माध्यम से पूरे उत्तर पूर्व में विभिन्न परियोजनाओं के लिए भी 32,59,10,251 रुपए की राशि जारी की है। इन परियोजनाओं में स्कूल और कॉलेज भवनों का निर्माण, बांस और हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यटन विकास और कृषि से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। अरुणाचल प्रदेश में मिथुन संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना, साथ ही वेस्ट कामेंग जिले में आयोजित ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम भी क्षेत्र की जैव विविधता और सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कुल मिलाकर ये सभी पहल उत्तर पूर्व, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश में समग्र विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और युवाओं के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
श्रोताओं, अब हम चलते हैं त्रिपुरा, और त्रिपुरा में हम जान रहे हैं एक विद्यालय के इतिहास के बारे में। हम सभी जानते हैं कि बहुत से भारत में ऐसे पुराने विद्यालय हैं जो आज अपनी विरासत, अपनी शिक्षा पद्धति से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो त्रिपुरा अगरतला में भी एक ऐसा ही विद्यालय है, नेताजी सुभाष विद्या निकेतन विद्यालय। 1948 में इस विद्यालय की स्थापना हुई थी और ये त्रिपुरा का पहला सरकारी विद्यालय था। इस विद्यालय की प्लैटिनम जुबली समारोह के अवसर पर हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य जी ने हमें एक विशेष रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने इस विद्यालय के इतिहास के बारे में हमें बताया है और साथ ही ये भी बताया है कि किस तरह से त्रिपुरा में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में इस विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए ये खास रिपोर्ट सुनते हैं।
करीब 163 वर्ष पहले त्रिपुरा में महाराजा बीरचंद्र माणिक्य के प्रयासों से पूर्वोत्तर भारत का पहला सरकारी विद्यालय शुरू हुआ था। तभी से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की परंपरा बनी रही। बालिका शिक्षा को भी विशेष महत्व दिया गया। शिक्षा की ये रोशनी राज्य के अलग अलग हिस्सों में सभी जाति और जनजाति के लोगों तक पहुंची। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए विभाजन के कठिन समय में कुछ जागरूक लोगों ने वर्ष 1948 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के शिक्षा मॉडल और महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर इस नेताजी सुभाष विद्या निकेतन नाम के विद्यालय की स्थापना की। देशभक्ति, अनुशासन और मेहनत से पढ़ाई की मजबूत परंपरा ने इस विद्यालय को अगरतला और त्रिपुरा के शिक्षा क्षेत्र में विशेष पहचान दिलाई। ये बात विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी और एमबीबी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर सुमंत चक्रवर्ती ने कुछ इसी तरह बताई।
नेताजी सुभाष विद्या निकेतन मोस्ट कम्प्लीटेड 78 ग्लोरियस ईयर्स एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस द स्कूल वॉज एस्टेब्लिश्ड विथ द हेल्प ऑफ few people who want that the migrated people should get proper education. Keeping that in mind and the Netaji legacy, the school was established and it is one of the best pioneer school not only in the state but in the entire Northeast. The students passing out from this school are now working in India, in abroad, in various prestigious posts. This is the Bengali medium school and the school is maintaining its legacy.
ये संस्थान केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा, यहाँ शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बराबर महत्व दिया गया। नियमित अभ्यास और भागीदारी से विद्यार्थियों को कई उपलब्धियाँ मिली। विद्यालय के पूर्व छात्र और शिक्षक राज्य के प्रसिद्ध कलाकार सुदीप्त शेखर मिश्र के अनुसार देशभक्ति, अच्छे संस्कार, अनुशासन और तार्किक सोच विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं और उन्हें ज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं।
सेलिब्रेटिंग द प्लैटिनम जुबली ऑफ नेताजी सुभाष विद्या निकेतन इज ए मोमेंटस ओकेशन स्पेशली फॉर समवन डीपली रूटेड इन द कल्चरल एंड एजुकेशनल फैब्रिक ऑफ अगरतला। एज ए प्रीमियर इंस्टीट्यूशन दैट हैज शेप्ड जनरेशंस, हिज जर्नी इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग बट अबाउट द लेगेसी ऑफ डिसिप्लिन, पेट्रियोटिज्म एंड द आर्ट्स दैट इन इंस्टिल्स। गिवन माय बैकग्राउंड एज ए म्यूजिशियन एंड एजुकेटर, द माइलस्टोन लाइकली रिजोनेट्स विद माय ऑन सेवरल लेवल्स।
कोविड काल के दौरान शुरू हुए प्लैटिनम जुबली समारोह के लंबे चरण के बाद भी ये विद्यालय आज नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहा है। त्रिपुरा के प्रमुख बंगाली मध्यम विद्यालयों में से एक नेताजी सुभाष विद्या निकेतन आज भी शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी अगरतला से सुमन भट्टाचार्य।
उत्तर राज्यों को खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। आप सभी जानते हैं कि मणिपुर में खेला जाने वाला पोलो शताब्दियों से मणिपुर में खेला जाता रहा है और आज भी इसे इस राज्य में खेलने की परंपरा है। इसी तरह से तमाम ऐसे खेल हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न जनजातियों द्वारा आज भी खेले जाते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है। बहुत सारे पदक हमारे देश के लिए उन्होंने जीते हैं। तो आइए एक विस्तृत आपको रिपोर्ट सुनवाते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के खेलों की रोचक यात्रा पर, जिसमें हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्यों के परंपरागत खेलों के बारे में और साथ में सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जिसके तहत पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उत्तर पूर्व भारत, जिसे हम भारत का रत्न भी कह सकते हैं, न केवल अपनी संस्कृति, परंपराओं और भाषाई विविधताओं के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के लोग खेलों के क्षेत्र में भी भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। यहाँ की मिट्टी में ऐसी सादगी और कठोरता है जो खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है। यहाँ के पारंपरिक खेल आज भी गांव कस्बों में जीवित हैं और वहीं से निकलते हैं ऐसे खिलाड़ी जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का परचम लहराते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में विविध पारंपरिक खेल देखने को मिलते हैं, जो स्थानीय संस्कृति, त्योहारों और जीवन शैली से गहराई से जुड़े हैं। असम में पारंपरिक खेलों का प्रमुख उदाहरण है दोंधी बियो, जो दो टीमों के बीच खेले जाने वाला एक तेज गति वाला खेल है। वहीं कबड्डी और गिल्ली डंडा जैसे खेल ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं। मणिपुर का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है सगोल कांगजेई, जिसे आधुनिक पोलो का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यहाँ के लोग सदियों से इस घुड़सवारी खेल को खेलते आए हैं। इसी राज्य से पोलो का अंतर्राष्ट्रीय सफर शुरू हुआ। थांगता और सरित सरक मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट्स हैं, जिनमें शारीरिक क्षमता, लयबद्धता और मानसिक संतुलन की जरूरत होती है। यूबी लकपी मणिपुर का एक पारंपरिक खेल है, जो रग्बी जैसा होता है, लेकिन इसमें तेल से लिप्त नारियल का उपयोग गेंद की तरह किया जाता है। ये खेल खासकर त्योहारों पर खेला जाता है और इसके पीछे धार्मिक महत्व भी है। मेघालय में जटरा और वाईकुपर जैसे पारंपरिक खेल देखे जाते हैं, जो पारंपरिक समुदायों के बीच आपसी सहयोग और संतुलन को बढ़ावा देते हैं। यहाँ आर्चरी यानी तीरंदाजी बहुत लोकप्रिय है, विशेषकर तेल शिला नामक खेल, जिसमें दैनिक जीवन की कुशलता झलकती है। मिजोरम में इंटर विलेज फुटबॉल टूर्नामेंट आज भी पारंपरिक गौरव का विषय रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किट्टल और सुपेक जैसे खेल खेले जाते हैं, जिनमें शरीर के लचीलेपन और तीव्रता की परीक्षा होती है। नागालैंड में खो खो और सेसे जैसे पारंपरिक खेल युवाओं को न केवल शारीरिक रूप से दक्ष बनाते हैं, बल्कि सामुदायिक भावना भी सिखाते हैं। नागा रेसलिंग यहाँ का एक अत्यंत लोकप्रिय खेल है, जो ताकत, संतुलन और तकनीक पर आधारित होता है। अरुणाचल प्रदेश में एपटानी जनजाति का डीलो खेल और मिशमी जनजाति का कट्टा फाइटिंग आज भी पारंपरिक मेलों में दिखते हैं। यहाँ के बोंग गेम्स और लोकल एथलेटिक्स स्पर्धाएं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में खेले जाते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की कमी के बावजूद खिलाड़ी पूरी ऊर्जा के साथ खेलते हैं। त्रिपुरा में मुकना और थांगुर जैसे कुश्ती आधारित खेल स्थानीय युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं। बम्बा और नटुआ जैसे खेल भी विभिन्न जनजातियों में खेले जाते हैं। सिक्किम में याक रेसिंग और थोड़गे जैसे खेल पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा हैं। सिक्किम की ऊंचाई और कठोर मौसम के बीच ये खेल खिलाड़ियों की मानसिक और शारीरिक क्षमता की परीक्षा लेते हैं। ये पारंपरिक खेल न केवल सांस्कृतिक पहचान के वाहक हैं, बल्कि खेल भावना, अनुशासन और परिश्रम के बीज भी बोते हैं। यही कारण है कि आज इन राज्यों से निकलकर कई युवा खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर कर रहे हैं। उत्तर पूर्व भारत के खिलाड़ी अब किसी भी खेल मंच पर केवल भाग लेने नहीं जाते, बल्कि पदक जीत कर लौटते हैं। इस क्षेत्र की मेहनती और अनुशासित जीवन शैली ने यहाँ के खिलाड़ियों में एक विशेष मानसिक दृढ़ता पैदा की है, जो खेलों में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्तर पूर्वी भारत के युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनका प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की खेलो इंडिया योजना की, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्कूली और कॉलेज स्तर पर खिलाड़ियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण, पोषण, कोचिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में खेलो इंडिया केंद्र खोले गए हैं। अकेले मणिपुर में 2023 तक 30 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र खोले जा चुके हैं। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत कई उत्तर पूर्वी खिलाड़ियों को सीधे आर्थिक सहायता मिल रही है। मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन और जेरेमी लाल रिनुंगा जैसे खिलाड़ी इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। पूर्वी क्षेत्रीय युवा संसाधन केंद्र के माध्यम से भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मणिपुर सरकार ने राज्य खेल नीति 2020 को लागू किया है, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार, सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति दी जाती है। मिजोरम सरकार ने स्टेट स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। मिजोरम में फुटबॉल के लिए मिजोरम प्रीमियर लीग शुरू की गई है। असम सरकार ने 2023 में मिशन टैलेंट हंट की शुरुआत की थी। गुवाहाटी में सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एथलेटिक्स, तैराकी, शूटिंग और फुटबॉल के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। नागालैंड सरकार ने यूथ एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट्स कार्यक्रम चलाया है। कोहिमा में नागालैंड ओलंपिक्स का आयोजन अब नियमित रूप से हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान लागू किया है। वहीं त्रिपुरा सरकार की खेलो त्रिपुरा पहल और सिक्किम सरकार के या गेम्स फेस्टिवल पारंपरिक खेलों को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। पूर्वोत्तर भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण के कई क्षेत्रीय केंद्र भी कार्यरत हैं। इम्फाल और गुवाहाटी के केंद्र वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी और फुटबॉल के लिए प्रमुख माने जाते हैं। जहां एक ओर संसाधन सीमित है, वहीं दूसरी ओर लगन असीमित है। यही कारण है कि भारत की खेल नीति में अब उत्तर पूर्व एक केंद्रीय स्थान ले चुका है। पूर्वोत्तर डायरी डेस्क के लिए सरफिरोजी।
एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये। एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए, और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
खुल के खिल खिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। खुल के खिल खिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये। एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।